आदरणीय राजू भाई जी, आपका आज का विषय है संस्कार मिलन से संपूर्णता का मिलन। आदरणीय राजू भाई जी।
ओम शांति, ओम शांति। बाबा ने हम सबको संस्कार मिलन की राह सिखाई है। संगम युग पर जब हम सब आपस में संस्कार मिलन की राह करते हैं, तब एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा सतयुग की स्थापना होती है। संस्कार ऐसे बने हैं, सब जानते हैं कि बीज है संकल्प, संकल्प से बोल में आए, बोल से कर्म में आए, और जो कर्म बार बार किए उसके संस्कार बन गए। तो जैसे संस्कार बने वैसे संकल्प भी चलने लगे, ये चक्र है। बाबा ने हमें संस्कारों को दिव्य, शुद्ध, पवित्र बनाने की पढ़ाई है, और आपस में हम संस्कार मिला करके चलें, क्योंकि संस्कारों में भिन्नता तो है, वो तो रहेगी ही, वो कभी एक हो जाएंगे। आपके संस्कार अपने हैं, लौकिक में भी दो भाई दो बहनें जो ब्लड कनेक्शन में होते हैं उनके भी संस्कार नहीं मिलते, लेकिन संगम युग पर हमारा रूहानी कनेक्शन है, और इस रूहानी कनेक्शन में जब हम सब बाबा के संस्कारों को देखते हैं कि बाबा के क्या संस्कार थे, उनका मन, वचन, कर्म कैसा था, तो बाबा जैसा हम सब बनना चाहते हैं। और जब सब एक ही लक्ष्य रख करके आगे बढ़ते हैं कि हमें अपने उस संपूर्णता के संस्कारों को इमर्ज करना है, वो प्राप्त करना है, तो जब सभी के संस्कार एक लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने लगते हैं तो आपस में भी सबके संस्कार मिल जाते हैं, एक हो जाते हैं। तो बाबा ने हम सबको एक अच्छी विधि, एक ही अच्छा गोल दिया, एक लक्ष्य दिया। इस लक्ष्य को आप सबको प्राप्त करना है, इसलिए अपने अपने संस्कार जो हैं, उन संस्कारों को न देख करके अपने सामने बाबा के संस्कारों को देखो। शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के तन से जो कार्य किए हैं, शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को अपने संस्कार दे दिए, दोनों समान बन गए ना, बाप दादा। तो बाबा के संस्कारों को हम देखते हैं कितने उदार दिल, कल्याणकारी, रहम दिल, क्षमा वाले बाबा के संस्कार कैसे हैं। बाबा कहता है इन संस्कारों को अगर आप सब कॉपी करेंगे तो आपके संस्कार भी आपस में मिल जाएंगे। हमने शुरू से देखा बाबा ने दीदी और दादी की जोड़ी बनाई। दीदी बहुत इकोनॉमी से यज्ञ में रही, शुरू से ही थी बड़े घर की, बड़े परिवार की, पैसे वाले घरों की, लेकिन बाबा के पास आई, बेगरी पार्ट शुरू हुआ, सब कुछ त्याग करके समर्पित हुई, कोई चीज की चिंता परवाह नहीं की, और उसमें रह करके इकोनॉमी से यज्ञ को चलाया, क्योंकि बाबा ने मम्मा के बाद दीदी जी को निमित्त बनाया, परिवार को आगे बढ़ाओ चलाओ। और दादी जी आई तो दादी जी बॉम्बे में थी, सेवा पर थी, बेहद में थी, तो दादी जी के संस्कारों में एकदम बड़ी दिल, फ्राक दिल, और दीदी के संस्कारों में एकदम इकोनॉमी, एकदम बेगरी पार्ट से जैसे आगे यज्ञ को बढ़ाया था। लेकिन जब बाबा ने इन दोनों के ऊपर ज्ञान का कलश रखा, वो तो मालूम होगा आप लोगों को, 69 में दीदी तो पहले से ही मधुबन में थी, बाबा के पास मम्मा के बाद ही दीदी को रखा था मधुबन में, लेकिन बाबा को दादी को आगे लाना था इसलिए दीदी को सेवा पर भेजा, और दादी को उस दिन जिस दिन बाबा को अव्यक्त होना था उस दिन रोक लिया और अपनी सारी विल पावर सारा विल कर दिया जैसे ब्रह्मा बाबा ने दादी के हाथ में। दादी और दीदी की जोड़ी बनी, लेकिन कहते थे शरीर दो हैं आत्मा एक है, संभव तो नहीं होता है ऐसा, हर एक के संस्कार अलग, हर एक की आदतें, अपने स्वभाव, अपनी मान्यताएं, लेकिन उन दोनों ने इतना अपने आप को मिलाया जो किसी को ये नहीं पता चलने दिया कि दीदी के विचार अलग हैं, दादी के विचार अलग, और अगर अलग हो भी जाते थे हम लोगों को दिखाई देता था तो भी झुकना, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना, बड़े ने दादी ने कहा है दीदी कहेगी, दादी की बात को मैं नहीं कट कर किया, दीदी ने कोई बात कह दी भले वो दादी को लगे कि ऐसा नहीं हो सकता लेकिन दीदी ने कहा है माना, हाँ जी। तो जब संस्कारों का मिलन मैंने देखा, कितना दोनों ने एक दूसरे को समझा, समझ करके एक दूसरे के विचारों को रिगार्ड दिया, रिस्पेक्ट दिया, एक दूसरे को अपने से बड़ा समझा, अगर ये समझती ना मैं बड़ी हूँ, दीदी समझती है मैं पहले से हूँ, ये तो अभी आई है, तो वहां टकराव पैदा हो जाता है। दीदी कहती थी दादी बड़ी है और दादी कहती थी दीदी बड़ी है, दोनों ने एक दूसरे को इतना सम्मान दिया, इतना आगे रखा, इसलिए संस्कार मिलन हो गया। थे अलग संस्कार, बहुत भिन्नताएं थी, मैं छोटी छोटी बातें अगर आपको सुनाऊंगा ना कहेंगे ऐसा भी था क्या, क्योंकि हम सब मधुबन में जब आए शुरू शुरू में छोटे थे, 16 साल 15 साल के सब, तो हम लोगों की आदतें अपनी, हम लोगों का रहन सहन अपने ढंग का, और मधुबन में इतने सब वैरायटी को एक के मत पर चलाना, बेगरी पार्ट की तरह चलाना बहुत बड़ी बात थी सबको, लेकिन खुद चल करके चलाती थी। बड़ी दिल से दादी कहती थी देखो जो दादी दीदी खाएंगी वही सबको खाना है, ऐसे नहीं मेरे को अलग से भोजन मिलेगा इनको अलग मिलेगा। एक बार एक कोई आम लेके आया तो दादी के सामने आम काट के रख दिए, बड़ों ने कहा कि दादी आपके लिए आम आए, बोले कितने आए हैं, बोला ये तो दादी बहुत गिनती के दो चार, अभी तो बहुत महंगा है। दादी कहती भाई ऐसा है कि मैं तो नहीं खाऊंगी, जब तक सारे यज्ञ को जब सभी भाई बहनों को अगर नहीं खिलाएंगे तो मैं नहीं खाऊंगी, चाहे जितना महंगा हो, मैं क्यों खाऊं, ये सब खाएंगे तब मैं खाऊंगी। सबके लिए आम आए फिर दादी ने खाया, माना इतना उनकी बड़ी दिल थी, फराक दिल थी कि जो दादियां खा रही हैं, जो दादियां पहन रही हैं वही सारे परिवार वाले पहने खाएं, इसलिए उनके प्रति इतना रिस्पेक्ट सबका था, इतनी भावनाएं थी, एक ने कहा दूसरे ने माना। आज इतने बड़े यज्ञ को लेकर के जो इतना बढ़ाया विस्तार किया उसके कारण, उसका कारण यही रहा कि उन्होंने अपने से हर एक को अधिक सम्मान दिया, कभी भी ये नहीं आया मैं बड़ी हूं ये छोटे हैं, ये तो कल से आए हुए हैं मुझे तो अनुभव है, कोई के भी अनुभव को कोई की विशेषताओं को कट नहीं किया। संस्कार मिलन की अगर रास करनी है इतने बड़े परिवार के अंदर तो हम सबको एक दूसरे के विचारों को रिगार्ड देना बहुत जरूरी है, रिगार्ड देंगे रिस्पेक्ट देंगे तो अपने आप संस्कार झुक जाएंगे, आपस में मिलन हो जाएगा। तो पहले हम आपस में परिवार के बीच में देखें, अभी आप लोग लौकिक में रह रहे हैं, अलौकिक परिवार भी बड़े हैं लेकिन लौकिक में अगर कोई रह रहे हैं, अगर हरेक की विशेषताओं पर आपका ध्यान है, ये अपेक्षा अगर रखोगे कि जैसा मैं चाहता हूं ऐसे सबकी विशेषताएं हो जाएं, तो वहां संस्कारों में टकराव शुरू हो जाएगा। क्योंकि हर एक के संस्कार और हर एक की विशेषताएं अपनी अपनी हैं। परिवार के सदस्य अगर आप देखेंगे, आपके परिवार में 5, 7, 8, 10 लोग हैं, तो एक का विचार दूसरे के विचार से नहीं मिलेगा। एक की जो अपेक्षाएं हैं, एक की जो उम्मीदें हैं, वो दूसरे की उम्मीदों से मेल नहीं खाती। अब वहां पर आपको हर एक की विशेषता को देख करके उसको उसी प्रकार से हैंडल करना, ये आपको कला आनी चाहिए। दादियों ने जो इतने बड़े यज्ञ को एक करके चलाया, इतना आगे बढ़ाया, उसके पीछे यही रहा कि उन्होंने ये नहीं सोचा कि जो मेरी विशेषता है वो इनके अंदर आनी चाहिए, ये इनकी जो विशेषता है वो बाबा के काम में लगनी चाहिए। समझ रहे हैं? इनकी जो विशेषता है वो विशेषता बाबा के काम में लगे, न कि मेरी जो विशेषताएं हैं, दादी की जो विशेषताएं वो इसमें समान बने, ऐसा अपेक्षा नहीं रखी उन्होंने। और जिसकी विशेषताएं जिस प्रकार की थी, सब पर ध्यान रख करके उनको उसी प्रकार की सेवाएं दे दी, उसमें वो सफल हो गए, नंबर आ गए, क्योंकि उनकी विशेषता थी वो। मान लो कोई को भोजन बनाने की विशेषता है, कोई को आर्ट डिजाइन करने की विशेषता है, कोई के अंदर प्रवचन कहने की विशेषता है, कोई बहुत अच्छी तरह से व्यवस्थित चीजें रखते हैं, कोई चीज को नुकसान होने नहीं देते हैं, हर एक की अपनी अपनी विशेषता होती है। कोई होंगे लापरवाह होंगे, जब चीजें जो आई वही पड़ी है, और कोई अंदर होता है कि नहीं नहीं हर एक चीज व्यवस्थित होनी चाहिए, जहां की है वहां रखी होनी चाहिए, विशेषता है उस आत्मा की। मैंने भी अपने डिपार्टमेंट में देखा, जिसकी जो विशेषता है वही सेवा उसको दिए, इसलिए आज तक मेरी डिपार्टमेंट में कोई टकराव नहीं हुआ, सबके संस्कार मिलन हो गए। और अगर मैं ये सोचता जैसी मेरी विशेषता ऐसी इसकी विशेषता होनी चाहिए, तो हो सकता है? हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मेरी अपनी विशेषता है, उसकी अपनी विशेषता है, उसके अपने संस्कार है, मेरे संस्कार अपने हैं। तो संस्कार मिलन के लिए हम सबको गोल सामने रखना है, बाबा को सामने रखना है, कि बाबा के कार्य में कोई रुकावट ना आए, उसका कार्य आगे से आगे बढ़े, जय जयकार हो, बाबा की प्रत्यक्षता हो। इसलिए इन आत्माओं के अंदर जो विशेषताएं हैं, जो इनके संस्कार हैं, उन्हीं संस्कारों को इस सेवा में लगा देना। इस बात को समझना है, बहुत गहरी बात मैं आपको बता रहा हूं। और इसके कारण कभी भी टकराव की स्थिति नहीं बनी, मन मुटाव नहीं हुए, किसी की कमी और कमजोरी को नोट करके उसके प्रति अपना दृष्टिकोण बना लेना, इससे क्या होगा? यह ही ऐसा, ये तो हमेशा नुकसान करता है, ये तो सुधरने वाला ही नहीं है। कई बार ऐसे दृष्टिकोण में हम ले लेते हैं, और इस प्रकार का दृष्टिकोण अगर हमारे परिवार में बन जाए, हम किसी के प्रति भी ये सोच लें कि ये तो बार बार गलती करता है, तो सुधरेगा ही नहीं, तो उससे हम सेवा लेंगे, उसको आगे बढ़ा पाएंगे? इसको हटा दो, किनारा कर दो। दादियों ने हम सबको इस तरह से किनारा नहीं किया, लेकिन उनकी विशेषताओं को अगर कोई एक बार दो बार किया भी, तो भी उसको कहा नहीं, तुम ही करोगे, तुमको ही करना है, सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा अटेंशन से ध्यान दे करके सिखाया, समझाया, उनसे डिपार्टमेंट छुड़ाई नहीं। और इसके कारण सब के सब एक होकर के रहे, संगठन एक होकर के चला, इतनी जो वृद्धि हुई, इतना जो यज्ञ का विस्तार हुआ, उसका मूल कारण यही रहा कि बड़ों ने बड़ी दिल से, बड़े प्राग दिली से उनका सम्मान दिया, उनकी विशेषताओं को देखा, उनको सेवा में लगाया, कोई ने कुछ नीचे ऊपर किया उसको क्षमा कर दिया, उसके प्रति कभी भी अपने दृष्टिकोण को बदला नहीं, अपनी भावनाएं नहीं परिवर्तन की, बड़े दिल से ठीक है, ठीक है, सब ठीक है, ठीक हो जाएगा, ये भावना हमारे संस्कारों को मिलाती है। अगर हम सब संस्कार मिलन की रास करना चाहते हैं आपस में, क्योंकि जब तक हमारा संस्कार मिलन नहीं होगा, तब तक बाबा को हम प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। आज ब्राह्मण आत्माएं जो कहती हैं हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हैं, हम पवित्र और योगी हैं, और हमारे विचारों में ही मतभेद हो, टकराव की स्थिति पैदा हो, संस्कार अलग अलग दिखाई दे, तो लोग कहेंगे दूसरों को क्या ज्ञान देते हो, पहले आप तो देखो अपने को, नहीं कहेंगे, हमें अपने को दिखाएंगे, आईना दे देंगे। इसलिए बाबा कहता है बच्चे कुछ सहन करना पड़ता है, कुछ समाना पड़ता है, कुछ भुलाना पड़ता है, कुछ मिटाना पड़ता है, ऐसे थोड़ी संस्कार मिल जाते हैं। संगठन के बीच में हर एक की क्वालिटी अपनी है, हर एक की विशेषताएं हैं, उसकी अपनी समझ है, अपनी बुद्धि है, अपनी उसके माइंड का डेवलपमेंट है, समझना पड़ेगा। अपेक्षाएं नहीं रखनी हर एक से, नहीं तो टकराव पैदा हो जाएंगे, मतभेद हो जाएंगे। आज जितने भी टुकड़े होते हैं संस्थाओं में, उसके कारण क्या होते हैं? यही कारण होते हैं, समझ नहीं पाते एक दूसरे को। बाबा ने हम सबको एक दूसरे को समझ दी, समझने की कला दे दी, समझ लो। और ये समझ तभी आती है जब हमारी बुद्धि बहुत क्लीन है, शांत है। शांत बुद्धि फट से सामने वाले व्यक्ति को परख सकता है। इसलिए जितना हो सकता है हलचल में नहीं आओ, सुनी सुनाई बातें बहुत नुकसान करती हैं। आज व्यक्ति अगर अपना दृष्टिकोण किसी के लिए बदलता है तो उसका कारण क्या होता है? सुनी सुनाई। हमारी दीदी की एक बहुत बड़ी विशेषता थी, दीदी मनमोहिनी की बात सुना रहा हूं मैं, शुरू शुरू में मैं आया। अगर मान लो मैंने किसी भाई की या कोई बहन की बात दीदी को बताई कि दीदी वो ऐसे ऐसे करे उससे यज्ञ का ये नुकसान होगा, कंप्लेन की रीति से हमने बताई, दीदी कहती तुम इधर बैठो, बिठा देती थी। और फिर जिसके बारे में मैंने उसको बताया है उसको कहेगी उसको अभी बुला लाओ, उसको नहीं भेजती थी, उसको अपने पास बिठाती थी। दूसरे भाई को, पहरे वाले को बोलती थी जाओ उसको बुला लाओ। अब जब वो सामने आ गया, अगर ये झूठ होगा तो क्या होगा? तो कांपने लगेगा, बोल ही नहीं सकता उसके आगे। और अगर सच्चाई भी है तो उससे पास कराएगी, ये जो बोल रहा है कहां तक सत्य है, क्या है, आप क्या समझते हो। और अब दोनों की बातों को सुन करके, उसका समाधान करके, फिर दोनों को गले मिला देना, दोनों को टोली खिलाना, आपस में एक दूसरे को मुंह में खिलाओ, सॉरी करो और आगे बढ़ो। मतभेद नहीं करना, यज्ञ के अंदर कंप्लीट बनना है तो कभी किसी की कंप्लेन नहीं करना। ऐसे संस्कार मिलन करी रास करवाई, सुनी सुनाई बातें, अपना दृष्टिकोण बदल लिया, उसके प्रति हमने सुन लिया, अंदर अंदर भर लिया बात को, फिर जब वो आया उसको मार दिया, उसी तरह से बोल दिया, बेचारे की दिल को ठोस पहुंच गई। उसने कहा मेरी तो सुनी नहीं गई, उसने सुना दिया और इन्होंने मान लिया, हमारी भी तो सुनते कम से कम। तो जहां पर संस्कारों का टकराव होता है वहां यही कारण होता है कि निमित्त आत्माएं इतने बड़े दिल से किसी की बात को सुनती नहीं है, समझती नहीं है। और सुन लें, समझ लें, हल्का कर दें तो संस्कार कभी टकराएंगे नहीं। इस तरह से हमारी दीदी दादी ने इस यज्ञ को आगे बढ़ाया। संस्कार भिन्न है, स्वभाव अलग अलग है ना? बाबा कई बार कहते हैं अलग अलग जंगल की, अलग अलग वन की काठी, समझते हो, अलग अलग जंगल की लकड़ियां इकट्ठी हुई हैं। इस बड़े यज्ञ के अंदर देखो, यहाँ महाराष्ट्र भी है तो कर्नाटक भी है तो पंजाब भी है, यूपी भी है, बिहार भी है, बंगाल भी है, सब प्रकार के जंगल को जैसे अलग अलग की काठी को इकट्ठा करके एक एक स्थान पर रखा। कर्नाटक वाले तमिल साइड के, साउथ साइड के खाना पीना दाल चावल वाले अलग प्रकार का खाना पीना, पंजाब वालों का खाना पीना अलग, यूपी वालों का अलग, बिहार बंगाल वालों का अलग। अब एक भंडारे के अंदर एक मत होकर के चले और सब में हाँ जी करें, संस्कार मिलाने पड़ेंगे ना, नहीं तो अलग अलग भंडारे हो जाएंगे सबके। उनको समझना, उनको क्या चीज चाहिए, कैसे उनको संतुष्ट करना, बहुत बड़े दिल से बड़ों ने सबको समझा, सबको समझ करके उसी प्रकार की सबको पालना दी और समर्पित जीवन का महत्व बताया, उसके बाद उनको अपना साथी और सहयोगी बनाया। कभी भी टकराव की स्थिति खाने पीने में, रहने में, पहनने में उत्पन्न होने नहीं दी। बहुत बड़े दिल से उनका सम्मान किया, उनको जो चाहिए उसको पहले ऑफर किया, फिर धीरे धीरे एक ब्राह्मण कल्चर के अंदर बांध दिया, कोई दूसरी कल्चर रही नहीं, ये गुजराती, ये मराठी, ये पंजाबी, वो सब कल्चर एक कल्चर में आ गई। हमारी कल्चर क्या है? ब्राह्मण कल्चर है। अब विदेशी भाई बहने आते हैं, जिनका खान पान, जिनका रहन सहन सब कुछ अलग, उनको भी बाबा ने कहा बच्चे तुम्हारी कल्चर वो नहीं है, क्रिश्चियन कल्चर नहीं है, विदेश कल्चर नहीं है, तुम्हारी सबकी कल्चर ब्राह्मण कल्चर है। जब ब्राह्मण कल्चर को किसी ने अपना लिया, अमृत वेले उठना ही पड़ेगा उसको। ब्राह्मण कल्चर में क्या है? ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ब्राह्मण कल्चर के अंदर है शुद्ध शाकाहारी भोजन खाना है। ब्राह्मण कल्चर के अंदर है बिना स्नान पानी किए हुए ड्रेस भी वो बदलनी नहीं, पहननी नहीं है। बहुत सारी कल्चर है हमारी, और वो शुद्ध पवित्र बनाने के लिए, संपूर्णता का आह्वान करने के लिए है। जिस संस्कारों को हम बनाना चाहते हैं, ग्रहण करना चाहते हैं, उन संस्कारों को ग्रहण करने के लिए, उस संपूर्णता को प्राप्त करने के लिए हम सबको ब्राह्मण कल्चर अपनानी होगी। जो भी हैं, चाहे वो समर्पित हैं, चाहे प्रवृत्ति वाले हैं, सबको बाबा ने एक कल्चर में पाला है। एक कल्चर, अलग अलग नहीं है। यही एक शायद मैं समझता हूँ हमारा ईश्वरीय विश्वविद्यालय ऐसा है जिसके अंदर चाहे वो समर्पित हो, चाहे वो प्रवृत्ति वाला हो, घर गृहस्थी में रहे, सबके लिए एक जैसे नियम, एक जैसी धारणाएं, एक जैसी मर्यादाएं, एक जैसी ड्रेस। हाँ, कभी कभी प्रवृत्ति वालों को छुट्टी दी है, कोई ऐसे कार्य हैं, कलर ड्रेस में पहनना होता है, जरूरत होती है, भले पहनो, लेकिन ईश्वरीय विश्वविद्यालय की यूनिफॉर्म ये है, यूनिफॉर्म यही है। बाकी कोई जरूरत है, अब किसी शादी ब्याह के कार्यक्रम में आप सफेद साड़ी पहन के माताएं जाएंगी तो लोग क्या कहेंगे? अब शगुन मानेंगे उसको, वो लोग गलत मानते हैं। तो जिस प्रकार का माहौल है उस अनुसार हम अपने आप को ढालते हैं, लेकिन कल्चर हमारी नहीं है ये। कल्चर हमारी वही व्हाइट ड्रेस ही है। तो हम सबको इस बात को बहुत अंडरलाइन करना है कि अगर हमें संस्कार मिलाने हैं तो अपनी भिन्न भिन्न कल्चर को बदलना पड़ेगा। कभी ये नहीं कह सकते हो मेरी तो पंजाबी कल्चर है, मेरी तो हरियाणी कल्चर है, मेरी तो यूपी वाली कल्चर है, या मेरी साउथ वाली कल्चर है। सारी कल्चर को एक कल्चर में बदल दिया बाबा ने। इसलिए हम कहते हैं हम सब ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुल भूषण हैं। कोई न जाति भेद रखा, न धर्म भेद रखा, न भाषा भेद रखा, सबको बाबा ने एक ढांचे में ढाला है। जैसे एक ढांचा बना दिया जाता है ना, उसके अंदर जो चीज डालेंगे सब एक जैसे निकलेंगे। कोई भी किसी ब्राह्मण को देख लो, उनका खाना, उनका पीना, उनकी दृष्टि, उनकी वृत्ति, उनका व्यवहार, सब एक जैसे ढांचे के अंदर जैसे ढले हुए हैं। कहते थे ब्रह्मा कुमारियां तो जैसे एक ढांचे से निकली हुई है, लोग पहले कहते थे। अभी थोड़ा थोड़ा कुछ अंतर दिखाई देता है, लेकिन शुरू शुरू में जब स्थापना हुई तो सब यही कहते थे, तो जैसे एक ही ढांचे से निकले हुए हैं, बोलते भी एक जैसा है, ज्ञान भी एक जैसा सुनाते हैं। हर एक कहेगा परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, हर एक कहेगा गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है, हर एक कहेगा कल्प 5000 वर्ष का है। कितना वंडरफुल ज्ञान सारे ब्राह्मणों के अंदर, कितना बाबा ने कूट कूट करके ज्ञान भर दिया। उनकी दृष्टि, उनकी वृत्ति, उनकी स्मृतियां, उनके बोल, उनके कर्म, उनका व्यवहार, सब कुछ परिवर्तन कर दिया। अगर सचमुच संपूर्णता के संस्कारों का आह्वान करना है तो अपने ब्राह्मण कल्चर को देखना होगा। सचमुच मैं बाबा का बच्चा इस कल्चर के अंदर पल रहा हूँ कि मेरा उठना, मेरा बैठना, मेरा बोलना, मेरा चलना, मेरा हर कर्म ब्राह्मण कल्चर के अनुसार होना चाहिए। चेक करना अपने आप को, पूछना सचमुच ब्रह्मामुख की संतान मैं, ब्राह्मण बाबा का बच्चा इतना स्वच्छ, इतना पवित्र हूँ, मन वचन कर्म से शुद्धता आई है, संस्कारों में दिव्यता आई है, अलौकिकता आई है, वो संस्कार मेरे कहाँ तक बने हैं। अगर कोई कहे कि मैं तो देवता बनने वाला हूँ, मेरा लक्ष्य ये है कि ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता हमारे जीवन का लक्ष्य है, और लक्ष्य के प्रमाण अगर लक्षण कुछ अलग दिखाई दे रहे हो तो लोग मानेंगे, कहते तो हैं ये लोग, कहते हम देवता बनेंगे, पढ़ाई हमारी यही है। लेकिन अगर हमारे जीवन में वो दिव्यता नहीं दिखाई देती है, वो रॉयल्टी नहीं दिखाई देती है, वो पर्सनैलिटी नहीं बनाई है, कौन कहेगा ये देवता है बनेंगे। संस्कारों में, चलने फिरने में, बोलने में, देवता की तो सबसे पहली क्वालिटी क्या है? देवता क्यों कहते हैं? देने वाला, देने वाला, लेने वाला नहीं। अगर कोई लेने की इच्छा रखता है कि इसको मैं ये दे रहा हूं, मुझे इसके कुछ मिलना चाहिए, तो बाबा कहता है देवता बनने वाला नहीं है। देवता माना ही देने वाला। हर कर्म इंद्रिय से कुछ न कुछ दान करो, दो। कल सुना है ना बाबा की अखंड दानी की मुरली, अखंड महादानी। बहुत इस पर लोगों के प्रश्न आए, कहां से मुरली निकाली? हमने कहा भाई मुरली निकाली नहीं है, ये तो पॉइंट्स हैं। कोई मुरली एक दिन नहीं चली है ऐसी, ये तो भिन्न भिन्न मुरलियों से पॉइंट सेलेक्ट की हुई है। बाबा ने हम सबको ब्राह्मण जीवन में अखंड महादानी बनाया है। बच्चे सदा दान चलता रहे, दान पुण्य। आप दृष्टि से भी किसी को देखो तो नजर से निहाल कर दो, बोल इतने मधुर हो, आपकी जीवन इतनी सरल हो। सभी अपने आप को जरूर चेक करते होंगे, मेरे संस्कारों में दातापन की भावना कहाँ तक है, देने की भावना, कुछ नहीं किसी से चाहिए। अगर लेने की भावना होती तो वहां पर स्वार्थ आ जाता है, वहां पर लोग दूर होने लगते हैं। आज बाबा के यज्ञ की जो वृद्धि और विस्तार हुआ है, उसके पीछे हमारे बड़ों ने, हमारी दादियों ने एक ही भावना, एक ही संस्कार अपना लिया बाबा का, सबको देना है, सबको देना है, सबको देना है। आपको मालूम होगा जब बाबा के समय साकार में सौगात की सिस्टम थी, जो भी आए पार्टी उसको सौगात देनी है। जब संख्या बढ़ने लगी, मधुबन की दो चीजें प्रसिद्ध है, पांडव भवन में जब जाते हो तो एक तो क्लास के बाद टोली मिलेगी जरूर, दूसरा कोई भी आएगा तो बिना सौगात के वापस नहीं जाएगा। तो जब दीदी दादी आई और सेवाएं वृद्धि को पाने लगी, तो वहां पर थोड़ा सा प्रश्न आया कि क्या ये सिस्टम को बंद कर दें? खर्चा बढ़ता है, इतना आवक नहीं है, इतना सारा। दीदी दादी ने कहा जो बाबा ने सिस्टम बनाई है उसको हम जरा भी चेंज नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाए। आज तक 50 साल से मैं यज्ञ में रह रहा हूं, कोई भी बाबा के घर में आ जाए, चाहे वीआईपी आ जाए, चाहे ब्राह्मण आ जाए, चाहे टीचर्स हर 3 महीने के बाद आती हैं, लेकिन सौगात के सिस्टम अभी तक वही चल रही है। देना है, देना है, देना है। बाबा ने दे करके भरपूर किया और उससे फिर सरेंडर करा लिया है। वो सरेंडर तब हुआ है जब पहले बाबा ने दिया है। लेकिन पहले से ये सरेंडर हो जाए, पहले से दे देवे, ये भावना नहीं रखी। तो ये संस्कार जो दिव्यता के हैं, देवता बनने के संस्कार हैं, दिव्यता के हैं, हमारे सामने कोई भी व्यक्ति कैसा भी आ जाए, बाबा कहता कुछ नहीं दो, कम से कम 2 मीठे शब्द तो बोल दो। मीठे बोल तो बोल सकते हो, प्यार की दृष्टि तो दे सकते हो, मुस्कुरा करके बात तो कर सकते हो। ऐसे संस्कार जो रायल संस्कार बोले जाते हैं, रायल आत्माएं वैसे भी लौकिक दुनिया में भी जो होती है ना, अभी राजा ही तो नहीं रही लेकिन रायल घराने हैं। रायल घराने के आप बच्चों को देखेंगे ना, आप कोई भी चीज दो, ना करेंगे, लेंगे नहीं किसी से। इतनी रॉयल्टी होती है, कोई गेट जाए चीज उठा करके खाएंगे, कभी नहीं उठाएंगे। गिरी हुई चीज को कोई दे रहा है ऐसे कभी भी उनके अंदर वो संस्कार नहीं रहे। बाबा भी हमारे अंदर वो रायल संस्कार भर रहे हैं कि बच्चे मान लो कोई कमी कमजोरी अपनी छोड़ रहा है, बुराई छोड़ रहा है, कोई कमियां हैं उसके अंदर, आप रायल बच्चे हो, उन कमियों को जो छोड़ने वाली चीज है तुम नहीं ले सकते हो, ये संस्कार होने चाहिए। वो छोड़ रहा है, वो पुरुषार्थ कर रहा है और हम उसको नोट करके इधर उधर बातों को फैला रहे हैं, तो वो संस्कार अच्छे हैं या जो कर रहे हैं वो संस्कार अच्छे हैं? इसलिए बाबा हम बच्चों के संस्कारों को बहुत दिव्य अलौकिक पवित्र बनाने के लिए कहते हैं, बच्चे हर एक आत्मा के अंदर जो विशेषताएं हैं वो विशेषताएं देखो, उनका वर्णन करो। विशेष आत्मा अगर बनना है तो विशेषताओं का चश्मा पहन लो देखने का। जैसे कहते हैं ना, लाल चश्मा पहनो तो सब कुछ लाल लाल दिखाई देता है, अब हरा चश्मा पहन करके धूप में चले जाओ तो सब हरा हरा दिखाई देने लगेगा। बाबा कहता मेरे बच्चों को भी ये विशेषता देखने का चश्मा पहन लेना चाहिए। हर आत्मा के अंदर कोई ना कोई विशेषता है, आप उसकी विशेषताओं की बजाय उसके संस्कारों को, उसकी वर्तमान पुरुषार्थ को, उसकी कमी और कमजोरियों को अगर नोट कर रहे हो, माना आप अपने ऊपर वो किचड़ा, उसका किचड़ा अपने पास नोट कर रहे हो। ये संस्कार रायल नहीं है। अब वो रायल संस्कार वाली आत्माएं अपने दिव्य गुणों का दान करती हैं, अपनी दृष्टि से, अपनी वृत्ति से, अपनी शुभ भावनाओं से, अपने मधुर बोल से, कुछ न कुछ उसको सम्मान दे करके, उसको आगे बढ़ा करके, ये संस्कार बाबा कहते हैं रायल संस्कार हैं और ये आपके संपूर्णता के समीप ले जाएंगे। जो हम लक्ष्य रख करके आए हैं कि हम बाबा के समान बने, संपूर्ण बने, इन संपूर्णता के संस्कारों को प्राप्त करने के लिए कुछ संस्कार वर्तमान जीवन में अपनाने पड़ते हैं, और हम सब अपनाएंगे तो संस्कार मिलन अपने आप हो जाएगा। टकराव वहां हो रहा है जहां आसुरी संस्कार हैं, जो देहमान वाले संस्कार हैं, मैं और मेरे वाले संस्कार हैं, कुछ मैं भी हूं, मेरे अनुभव हैं, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं समझदार हूं, कई प्रकार के ऐसे मैंपन की संस्कार टकराव पैदा कर देते हैं। और बाबा ने, दादियों ने इस मैं को तो जड़ से मार दिया। मैं क्या हूं, कराने वाला करा रहा है, उसका बाबा का कार्य है विश्व परिवर्तन करना है, इतनी बड़ी श्रेष्ठ दुनिया लानी है, उसके विश्व का परिवर्तन के कार्य में बाबा ने मुझे अगर कोई थोड़ा सा चांस दिया, ये तो मेरा बहुत बड़ा भाग्य है। किसी को अगर यज्ञ के अंदर तन सफल करने का, मन सफल करने का, धन सफल करने का भाग्य मिल गया तो उसमें अहंकार किस चीज का कि मैंने भी कुछ किया है, मैं भी कुछ करता हूं। और शायद आप सबको पता है, बाबा की मुरलियां आप सुनते होंगे, कभी कभी कोई ऐसा कहता है ना, मैं एक मुरली चली है कुछ समय पहले, बाबा जब कभी जरूरत पड़े मुझे याद करना, बाबा सब कुछ मदद के लिए मैं बंधा हुआ हूं। बाबा क्या कहता है, क्या जवाब देगा, मैं तुमको याद करूं, तुम्हारे आधार पर यज्ञ चल रहा है क्या? जिसको भाग्य बनाना है बना लो, जिसको सफल करना है कर लो, भंडारा खुला हुआ है, भगवान क्यों मांगेगा, किसी के आगे हाथ फैलाएगा क्या, तो दाता है। हम सबको भी ऐसे बड़े दिल वाले संस्कार, दातापन के संस्कार, हर आत्मा की विशेषता को कार्य में लगाने के संस्कार, इन संस्कारों में संपन्न बनना है। फिर कमजोर संस्कार जो हैं भी, जो एक दूसरे के कारण टकराव पैदा करते हैं, वो अपने आप समाप्त हो जाएंगे। इस परिवार के अंदर एक दूसरे की विशेषता देखो, एक दूसरे की जो क्वालिटी है वो देख करके उसको कार्य में लगा दो, अपने आप सब संस्कार मिलन हो जाएंगे। हाँ, कहीं कहीं सुनना पड़ता है, झुकना पड़ता है, समाना पड़ता है, सहन करना पड़ता है, बाबा कहता कोई बात नहीं, उसकी चिंता नहीं, बहुत निर्माणता से। जो बीती बातों का चिंतन नहीं करते हैं, जो किसी की व्यर्थ और नेगेटिव बातों को नोट नहीं करते हैं, उनकी पहली एक संस्कारों के अंदर सरल नेचर बन जाती। आपने गुलजार दादी को तो देखा है ना, सभी ने, किसने किसने देखा दादी गुलजार को, सभी ने देखा है, ये माता ने हाथ उठा रहे हैं, नहीं देखा, गुलजार दादी को नहीं देखा, नए हैं बिल्कुल क्या? अच्छा, जानकी दादी को उनको भी नहीं देख पाया, जो नए होंगे शायद नहीं देख। गुलजार दादी को देखो, शांतामणि दादी को देखो, हमारी सब निर्मल शांता दादी जिन्होंने पुराने देखा है, इतनी सरल संस्कार। कोई भी जाए, कोई भी उनके बाजू में बैठे, कोई भी उनसे बात कर ले, नहीं कभी नहीं कहा होगा तुमने अपॉइंटमेंट लिया है क्या मेरे से, कहा है कभी किसी ने दादियों ने? कभी नहीं कहा। इतनी सरलता, कोई भी मिल सकता है, कोई भी बात कर सकता है, कोई भी अपनी बात कह सकता है। उन्होंने किसी की अवगुणों को, कोई की कमी कमजोरियों को अपने पास नोट ही नहीं किया। इतनी सरल नेचर बना लिया जो सबको सम्मान दिया, सबको सत्कार दिया, बहुत मधुर बोल बोले, सबको एक प्यार, एक जैसा प्यार दिया। बाबा कहता ये संस्कार संपूर्णता के संस्कार हैं, और ये संस्कार भी आप ब्राह्मणों को धारण कर लें। इन संस्कारों के लिए आप थोड़ा सा अटेंशन अगर देंगे कि मुझे तो ऐसा देवता बनना है, बाबा मुझे ऐसा बनाने आया है, तो ये दिव्य संस्कार हैं, सरलता के, मधुरता के, सम्मान देने के, बहुत निर्माणता के। ये संस्कार हमारे बन जाएं, अपने आप दिव्यता आ जाएगी, अलौकिकता आ जाएगी, उस संपूर्णता के संस्कार हमारे इमर्ज हो जाएंगे, और आपस में संस्कार मिलन स्वतः हो जाएगा। तो संस्कारों में टकराव वही हो रहा है जहां पर आपस में देह विमान आता है कि मैं बड़ी हूं, मैं बड़ा हूं, मैं अनुभवी हूं, मैं बुद्धि वाला हूं, मेरी माननी चाहिए, मेरी समझनी चाहिए। बाबा ने हम सबको कहा है बच्चे, बाबा सबसे बड़े से बड़ा बैठा है, आप सब बच्चे बन करके रहो। एक बैलेंस बाबा ने हम सबको सिखाया, अगर हम सभी ब्राह्मण उस बैलेंस को पालन कर लेना तो कभी भी आपस के संस्कारों में टकराव की स्थिति नहीं बनेगी। बोलो अनीता, कौन सा बैलेंस? बोलो जी, लौला, और बोलो कौन बोलेगा? भाई लोग बोलो कोई पीछे से जी, सुनाई नहीं दिया। भावना और विवेक, वो बैलेंस है बालक और मालिक। बालक मालिक, बालक जो होता है ना, छोटा बच्चा, वो सब बातें बोल देगा, करेगा, खेलेगा, लड़ेगा, झगड़ेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद भूल जाएगा। बाबा ने इस परिवार के अंदर संस्कार मिलन की रास करने के लिए ये बहुत सुंदर बैलेंस सिखाया। बच्चे, तुम शिव बाबा के बच्चे बालक हो और शिव बाबा की प्रॉपर्टी के मालिक हो। बालक बनने ही मालिक बन गए ना, उसके पास शांति, प्रेम, आनंद, सुख का भंडार है, ज्ञान का भंडार है, गुणों का भंडार है, शक्तियों का भंडार है। जो बच्चा बन गया वो मालिक बन गया। लेकिन कई बार यज्ञ के अंदर कई मालिक बन करके अपनी बात देते हैं और कहते हैं मैंने जो कहा वो राइट है, वही होना चाहिए। अब वहां पर टकराव पैदा होता है, क्यों? मैं मालिक हूं, मैं भी तो यज्ञ में हूं, पुराना हूं, कुछ हमने भी कुछ किया है, मेरी बात क्यों नहीं मानी जाती? वहां वो बैलेंस भूल जाता है कि मालिक बनकर के बात दो, और अगर मालिक बनकर के आपने दे दिया आपने बड़ों को, आप हल्के होके बालक बन जाओ। अगर स्थिति को एक रस रखना है तो, अगर हमको संस्कार मिला करके आपस में चलना है तो हम सब बाबा के बच्चे बालक सो मालिक हैं, मालिक सो बालक हैं। कभी भी आपस में टकराव की स्थिति नहीं बनती। हम लोगों के पास हैं जवाबदारियां हैं, काम है, कोई बातें लगती हैं अच्छी नहीं है, ठीक नहीं है, बड़ों को लिख करके या बोल करके बता देते हैं, मालिक बन करके बता देते हैं, इससे ये नुकसान हो रहा है, इसको देखा जाए, इस पर ध्यान दिया जाए। दिया गया या नहीं दिया गया, हम बालक हैं, अपनी बात हमने देके हल्का कर दिया। तो अगर हम सभी अपने परिवारों के बीच में भी ये बैलेंस रखते हैं कि हम कोई भी बात कहें जरूर मालिक बन करके, लेकिन बाबा के हम बालक बन जाएं कोई बात नहीं, जो करेगा वो पाएगा। जब ड्रामा के अंदर हर एक का पार्ट अपना अपना है, एक का पार्ट दूसरे से नहीं मिलता, तो मैं अपनी स्थिति किसी के पार्ट को देख करके डिस्टर्ब क्यों करूं? बालक सो मालिक बन करके अगर अच्छा नहीं लगता है बात बता दो, और फिर बालक बन करके बहुत हल्के होकर के आपस में रहो, एक दूसरे को संभालो, ठीक जो होगा ये जाने, इनके कर्म जाने। बाबा उसे मना करता है, ये नहीं सोचो कर्म जाने, सो भावना रखो, लेकिन हम अपनी स्थिति को बिगड़ने न दें। तो इसलिए संस्कार मिलन की रास करना, आपस में मिला करके चलना, ये हमारे ब्राह्मण कुल की शोभा है। जहां भी हम रहें, कुछ भी कैसी भी व्यक्ति हों, कैसे भी संस्कार वाले हों, उनके संस्कारों को समझ करके, पहले परख करके, फिर समझ करके, फिर उनके आगे उनको उसी तरह से सम्मान दे करके उनको हम झुका सकते हैं। कहते हैं झुकना ही झुकाना है, जो झुकता है वही दूसरों को झुका पाता है। मान मांगने से नहीं मिलता है, मान जो देता है उसको मान मिल जाता है। बाबा के ऐसे ऐसे जो मीठे महावाक्य है ना, इन महावाक्यों को अंडरलाइन करना। ये एक एक महावाक्य बाबा कहता अरबों खरबों रुपए का है, आपकी जिंदगी को बदलने वाला है। ऐसे नहीं मुरली सुन लिया तीन पेज की ठीक है, लेकिन इस मुरली के अंदर बाबा ने कितने रतन दिए हैं, कितने अमूल्य बातें हैं, ऐसी बातों को अंडरलाइन करके अगर कोई रखता है और वो समय पर याद आ जाए। कई कई बार कहते हैं ना शस्त्र है और समय पर याद नहीं आता। पॉइंट्स हैं, ज्ञान है, समझ है, लेकिन समय पर जब परिस्थिति ऐसी आई भूल जाती बातें, शस्त्र भूल जाए तो क्या फायदा। इसलिए आवश्यक है हम उन शस्त्रों को बार बार देखते रहें, रिवाइज करें। बाबा ने इतने अच्छे अच्छे ज्ञान योग के अस्त्र शस्त्र दिए हैं, उनको यूज करो, देखो, साफ करो, बीच बीच में चेक करो है मेरे पास, और जब समय है उस समय वो यूज कर सकते हैं। मान लो सहन करने का समय है, कोई बात ऐसी आ गई है, कोई बोल रहे हैं, कुछ हो रहा है, सहन कर सकते हैं? या सोचेंगे नहीं ये क्यों ऐसा बोलता है बार बार मेरे को, कब तक मैं सहन करूंगी? सामना कर लो इसका। सामना कर लिया, सहन नहीं किया, फिर उसके बाद पश्चाताप हो रहा है, अरे छोड़ देते क्या होता है इससे, दो मिनट में बातें खत्म हो जाते। बाबा कहता है सब शक्तियां आपका श्रृंगार हैं, लेकिन सर्वशक्तिमान उसको कहा जाता है जिसको समय पर वो शक्ति यूज करने की कला आती है। सहन भी करो, समा भी लो, सामना भी कर लो, परख भी लो, निर्णय भी करो, जहां समेटना है वहां समेट लो। ये बाबा ने हमें सब शक्तियां दी हैं संगठन में चलने के लिए, परिवार में चलने के लिए। योग से हमें सर्व शक्तियां प्राप्त होती हैं। अगर कोई योग लगा रहा है और उसके पास शक्ति नहीं है तो क्या कहेंगे? इसका योग यथार्थ नहीं है। अगर यथार्थ रूप से बाबा की याद है तो बाबा की याद में, उस सर्व शक्तिमान की याद में सर्व शक्तियां वरदान के रूप से हमें मिल जाती हैं, और वो शक्तियां समय पर काम आनी चाहिए। बाबा कहो और शक्तियां सामने आ जाएं। इसलिए बाबा कहता है ये भी जो संगम पर शक्तियों को यूज करते हैं वो अष्ट रत्नों में आ जाते हैं। हम सबको लक्ष्य तो ऊंचा रखना है ना, कमजोर लक्ष्य नहीं रखना। हम नंबर वन बने, बाबा कहता है तुम फर्स्ट डिवीजन में तो आके दिखा दो। तो सभी फर्स्ट डिवीजन में आने के लिए रेस करो, और हर शक्ति को समय पर आह्वान करो। कभी भी आपस में दिखाई दे संस्कार इसके ठीक नहीं है, ये ऐसे करता वो ऐसे करता, बाबा कहता है कोई कुछ भी करता है तुम देखते हुए भी नहीं देखो। ज्ञान सबको है, समझ सबके पास है, बाबा सिखा सबको रहा है, जितना जो पालन कर पाएगा उतना करेगा, अपने पद के अनुसार अपना पुरुषार्थ करेगा। कभी कभी हम कहते हैं हम पुरुषार्थ से अपना पद बना रहे हैं, प्रारब्ध बना रहे हैं, और कभी कभी मैं कहता हूँ प्रारब्ध के अनुसार हमारा पुरुषार्थ चल रहा है। जिसकी ऊंची प्रारब्ध बनने वाली है ना, उसका पुरुषार्थ अपने आप अच्छा हो जाता, उसके लिए सब रास्ते खुल जाते हैं। पुरुषार्थ करने के सब रास्ते उसके आगे खुल जाते हैं, और जिसकी प्रारब्ध ही अच्छी नहीं है, बेचारे को थोड़ा सा कुछ करना शुरू करता है, ये बिगन ये बिगन ये बिगन ये बिगन। डरो नहीं, लेकिन बाबा कहता है रेस करो, लक्ष्य रखो। पुरुषार्थ को यथार्थ समझना बहुत जरूरी है। कई बार पुरुषार्थ शब्द अलबेला बनाता है, मालूम आपको, मैं तो पुरुषार्थी हूं ना, ये कमी तो रहेगी, ये संस्कार तो अंत में खत्म होंगे। बाबा कहता अंत तक माया से युद्ध है, विजयी तो अंत में बनोगे। बाबा की बातों को भी हम अपने ढंग से अलबेलेपन की तकिया जैसे यूज कर रहे हैं। बाबा ने किसी बच्चे के आगे कहा होगा, कोई ऐसे होंगे बेचारे जिनको कहा होगा कि बच्चे अंत समय में पास हो गए, कोई बात नहीं, निराश नहीं हो, उदास नहीं हो। लेकिन हम सबको रेस करना है संपन्न संपूर्ण बनने की, संपूर्णता के संस्कारों का आह्वान करने की। इसलिए कभी कोई बात अगर ऐसी भी है, कोई संस्कार दिखाई देता है, किसी का भी दिखाई देता है, ये वर्तमान संस्कार है। बाबा ने किसी भी बच्चे के वर्तमान पर ध्यान नहीं दिया, उसके तीनों कालों को देख करके उससे बात की है। ठीक है, वर्तमान समय कोई हिसाब है, कोई पुरुषार्थी है, कोई मेहनत कर रहा है, लेकिन इस बच्चे को तो मैंने ये बनाया है और ये बना है ऐसा, उस स्वरूप को देखता है, हमारी संपन्नता को देख करके हमसे बात करता है। निराशा उदासी को दूर करने के लिए कहता, बच्चे तुमको तो मैंने बनाया था, तुम तो बने थे कल अब पहले, फिर से बन जाओ, रेस करो। तो बाबा हमारे तीनों कालों को देखता है और हम सबको भी कहता है, बच्चे किसी के वर्तमान को पुरुषार्थी को देख करके ऐसे नहीं सोचो, ये तो सुधरेगा ही नहीं, ये तो बदलेगा ही नहीं, ये तो ऐसा ही है। आप उम्मीदें नहीं छोड़ो, आप अपना लक्ष्य रखो, अपनी शुभ भावनाएं देते चलो, आज नहीं तो कल बदल जाएगा। तो पुरुषार्थी शब्द को कभी भी अलबेलेपन में यूज नहीं करना, अपने लिए या दूसरों के लिए। मुझे पुरुषार्थ के यथार्थ शब्द को समझ करके चलना है, और वो पुरुषार्थ शब्द का अर्थ है पुरुष आत्मा इस रथ में प्रवेश होकर के अपने काम कर रही है। पुरुषार्थ, पुरुष इस रथ पर रथी बन करके कार्य करे, देही अभिमानी स्थिति में रह करके आत्मा बन करके इन कर्म इंद्रियों से कर्म कराए, यही यथार्थ पुरुषार्थ है। तो हम सभी पुरुषार्थी, मम्मा पता किसको कहती थी, कहती थी मैं पुरुषार्थी इसलिए कहती हूँ, एक बार अगर कोई गलती हो गई वो दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए, तब तो कहेंगे पुरुषार्थी है। बार बार अगर वो गलती रिपीट करता रह रहा, रिपीट कर रहा है, माना वो पुरुषार्थी नहीं है, उस अलबेला है वो। इसलिए बाबा ने, मम्मा ने हम सबको यही सिखाया, दादियों ने यही सिखाया है कि संगम युग पर सब अपने ब्राह्मण कल्चर के अनुसार, ब्राह्मणों के दिव्य संस्कार हैं, पवित्र संस्कार हैं, स्वच्छ संस्कार हैं, बाबा के समान संस्कार हैं, ऐसे बना लो। हमारे आपस में ऐसे संस्कार मिल जाएंगे जो हम एक दिखाई देंगे, एक ने कहा दूसरे ने माना। मेरा अपना कोई निजी संस्कार है ही नहीं, क्योंकि हम बाबा के संस्कारों को अपना रहे हैं। तो ऐसे संस्कार मिलन की जब हम रास करें, सब ब्राह्मण बच्चे एक व्रत्ता, एक बाबा दूसरा न कोई, ऐसी स्थिति बना लेंगे तो बाबा को प्रत्यक्ष करने के हम सब निमित्त बन जाएंगे, और हमारी संपूर्णता जो हमारा आह्वान कर रही है, सभी ब्राह्मणों का आह्वान कर रही है, हम ऐसी रेस करें जो हम अपने संपूर्ण संस्कारों को वर्तमान जीवन से दिखाई दे, दिखा दें कि ये संस्कार हमारे हैं। पिछले संस्कार जो माया के हैं, देवमान वाले हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार वाले, ब्राह्मण जीवन में वो संस्कार, बाबा कहता उनका संस्कार कर दो। भट्टी तो इसीलिए करते हैं ना, योग ज्वाला, तो ज्वाला रूप योग करो, इसका अर्थ क्या हुआ, माना हमारे वो संस्कार जो विकारी पतित देवमान वाले हैं, वो योग की आग के अंदर जल जाएं, परिवर्तन हो जाएं, और आत्मा पवित्र स्वच्छ निर्मल कंचन काया बन जाए। इसी के लिए हम देश करते हैं, इसी के लिए हम पुरुषार्थ करते हैं, इसी के लिए हम भट्टी करते हैं। तो मैं समझता हूँ आप सभी को बड़ा अच्छा चांस मिला है, ड्रामा अनुसार चांस लिया ना, अच्छा 3 दिन अच्छी भट्टी कर लिया ना, सब संतुष्ट है यहाँ की भट्टी से, सब संतुष्ट है ना, ठीक है। ये तो चल रहा है, खेल चलता है, तो बीमारियों का खेल चल रहा है कलयुग का, परवाह नहीं करना, आती है जाती है। कुछ पूछना है किसी को, कोई प्रश्न है किसी का, कुछ बोलना हो तो बोलो, पूछना हो तो।
दीदी मनमोहिनी को दादी क्यों नहीं कहते?
ऐसा है कि ये जब सेवाएं शुरू हुई ना, ये तो सब बहन जी ही कहते थे सबको, दीदी दादी तो बाद में कहना शुरू किया, लेकिन दीदी गई थी सेवा पर यूपी साइड में, और यूपी साइड में बहन को दीदी कहते, तो दीदी वहां सेवा कर रही थी, वहां सेवा करते करते सब दीदी दीदी कहने लगे, तो बाबा ने भी दीदी कहना शुरू कर दिया, नाम पड़ गया। और दादी सिंधी में बड़ी बहन को कहते हैं, बड़ी बहन को दादी कहते हैं सिंधी भाषा में, और हिंदी में बड़ी बहन को दीदी कहते हैं। तो यूपी साइड में सेवा कर रही थी इसलिए उसको दीदी कहना शुरू कर दिया सबने, और दादी तो यूपी साइड में सेवा कही गई नहीं, इधर कर रही थी, तो इनको दादी, बड़ी दादी, मना बड़ी बहन के हिसाब से दादी कहा। तो इसमें दीदी और दादी का दोनों अंतर है, दोनों को बड़ी बहन को ही कहते, एक हिंदी में कह रहे हैं एक सिंधी में कह रहे हैं, भाषा के अंदर अलग। जी विधाता की स्टेज, जो ईश्वरीय विधान है, ईश्वरीय विधान तो समझते हैं नियम, जब हम ईश्वरीय नियमों को विधियों को यथार्थ समझ करके चलते हैं तो हमारा भाग्य जो बनता है, जैसे भाग्य विधाता बाबा को कहते हैं, भाग्य विधाता भाग्य बनाने वाला है लेकिन विधि पूर्वक बनाता है, ऐसे नहीं ऊपर कह देता भाग्य विधाता हूं तो मैं भाग्य बना देता हूं आपका, जो विधि पूर्वक चलते हैं उसका भाग्य ऊंचा बन जाता है। तो बाबा भाग्य विधाता है, विधाता इसलिए है कि हर नियम मर्यादा के अंदर रहता है और हर बच्चे को वही सिखाता है। तो कोई भी ब्राह्मण आत्मा को अगर भाग्य अपना ऊंचा बनाना है तो जो विधान है, जो ईश्वरीय नियम और मर्यादाएं हैं, उस विधान पर चल करके विधाता की स्मृति से, परमात्मा विधाता है, उस विधाता ने जो विधान बनाए, नियम बनाए हैं, उनको नियमों पर चलने वाला अपना भाग्य ऊंचा बना लेता है। इसलिए कहते हैं दाता विधाता वरदाता, शिव बाबा को ही कहते हैं दाता विधाता वरदाता। तो वरदाता तो कहते हैं तथास्तु कह देता तो हो जाता है, लेकिन पहले वो दाता बने, जो उसके पास शक्तियां हैं वो दूसरों को दान करे, और साथ साथ नियम और मर्यादाओं के अंदर पक्का होकर के चले, तो बाबा का वरदान उसके ऊपर है। ऐसे नहीं तथास्तु कह देता है, देखो आज इतने वरदान आप सुनते हैं, कोई भी वरदान की विधि है उसके बाद सिद्धि है। एक ही लाइन के अंदर मेरा एक ध्यान गया, जब बाबा ने दादी ने मुझे वरदान बनाने की बात कही तो ये जो पहली लाइन है वो मैंने बनाई, उसमें एक बात का ध्यान रखा कि कोई भी बात बिना मेहनत के बिना विधि के नहीं प्राप्त होती। अगर हमको बाबा ने कहा है तुम सफलता मूर्त भव, तो सफलता प्राप्त करने की विधि है, ऐसे नहीं कह दिया हो जाओगे, सफल करने से सफलता मिलेगी। जिसने अपने तन मन धन को सफल किया है तो पहले विधि बताई है फिर उसको वरदान दिया भव का। तो हम सभी ध्यान दें, बाबा हमें अगर वही वरदान देता है तो इसमें दो शब्द हैं वरदान, तुम पहले दान करो तो वरदान मिल जाएगा, दान नहीं कर रहे हो तो वरदान कैसे मिलेगा। अगर आपको वाचा में वरदान चाहिए, मनसा में वरदान चाहिए, कर्मणा में वरदान चाहिए, तो मनसा की शक्ति का दान करो। जो आपके पास मन की शुद्धता है, पवित्रता है, शुभ विचार है, अच्छे विचार हैं, उनका दान करो। दान करोगे तो वरदान मिल जाएगा, मनसा शुद्ध हो जाएगी, एकाग्र हो जाएगी और शक्तिशाली हो जाएगी, बाबा का वरदान मिल जाएगा मन मना भव, समझ गए। तो कोई भी बात को जो बाबा के कह रहे हैं उसके यथार्थ अर्थ को समझना, कि अगर विधाता बाबा है तो विधाता तभी बनता है जब बच्चे विधि को यथार्थ समझते हैं। जैसे विधानसभा होते हैं ना, तो वहां पर विधान बनाए जाते हैं, ऐसे ही बाबा ने हम सबको यहाँ पर विधान बना करके दिए हैं। और जो विधान अर्थात नियम और मर्यादाओं पर चलते हैं, उसके ऊपर विधाता का वरदान मिल जाता है, बच्चे हो जाएगा दाता विधाता और वरदाता। बाबा ने कहा है लास्ट सो फास्ट, अगर बनना है तो फास्ट रखना पड़ेगा। इसके पीछे क्या है विधि? जो फास्ट रखने वाले हैं वो फास्ट जा सकते हैं, फास्ट माना व्रत। जो व्रत लेंगे, जो नियम पालन करेंगे, दृढ़ता से उस पर चलेंगे, तो फास्ट रखने वाले फास्ट में जाकर के लास्ट आते भी नंबर वन जा सकते हैं। लेकिन बिना फास्ट किए हुए, बिना व्रत लिए हुए वो फास्ट नहीं जा सकते। इसलिए कोई भी वरदान है उसके पीछे आप देखेंगे बाबा ने कुछ न कुछ उसका विधि बताई है, उस विधि को पालन करने से वो वरदान सफल हो जाएगा। तो अगर व्रत रखेंगे, फास्ट रखेंगे, वैसे भोजन का फास्ट दुनिया में रखते हैं, बाबा ने भोजन का फास्ट नहीं सिखाया, लेकिन जो हमारे मन वचन कर्म ब्राह्मण जीवन में अशुद्धियां हैं उसका व्रत किया, हम ईश्वरीय जीवन में फास्ट चले जाएंगे। व्रत माना प्राण जाए पर वचन न जाए, संकल्प कर लो हिलना नहीं। तो ऐसा अगर व्रत ले लोगे तो फास्ट चले जाओगे, लास्ट आते भी फर्स्ट आ जाओगे, और जो व्रत ढीला कर लेते हैं वो बेचारे पीछे रह जाते। जी मामे कम का अर्थ है एक मेरी शरण में आ जाओ, शरण में जैसे कहते हैं मन मनाभो मध्याजी भो आता है, मामे कम माना मुझ एक की शरण में आ जाओ, एक के सिवाय दूसरे को याद नहीं करो, और मन मनाभो मन को बाबा में लगा दो, एक बाबा दूसरा न कोई, याद की यात्रा में रहना मन मनाभो कहलाता है। और एक को ही सब कुछ मान करके सरेंडर होकर के रहना, ओ मामे कम शरणम व्रज, ऐसे गीता में आया ना, मेरी शरण में आ जाओ, मेरे सिवाय और किसी को याद नहीं करो, दोनों शब्द इसी के हैं। चलो अभी 3 मिनट योग करके पूरा करें, आपको बोलना है जी। महादानी वरदानी, वैसे तो कोई भी शब्द में जब विशालता आती है ना, कहते महादानी है, एक दानी है एक महादानी, बड़ा दानी है उससे भी बड़ा है जो दान करके कभी याद नहीं करता। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे दान तो सभी कर रहे हैं लेकिन तुम महादानी बनो, और जब महादानी बन जाते हैं तो उसके ऊपर की स्टेज वरदानी, मतलब बिल्कुल जैसे तथास्तु कह दिया, सब कुछ दे दिया जैसे। तो ये तीनों स्टेजेज हैं, दानी महादानी वरदानी, नंबर वार, जैसे गुड बेटर बेस्ट है ना, एक दूसरे से ऊंची स्टेज है ये। जी स्मृति और वृत्ति, ये तो शब्दों को पकड़ के नहीं रहना। स्मृति कहते हैं याददाश्त, कहते हैं ना इसकी स्मृति बड़ी पावरफुल है, ब्रेन में बहुत अच्छी याददाश्त है इसकी, तो कई बातें पास्ट की स्मृतियों में रहती हैं, लेकिन जब कोई बात बार बार स्मृति में लाई जाती है, बार बार उसका चिंतन किया जाता है, तो उसकी गहरी वृत्ति बन जाती है। कहते इसका तो दृष्टिकोण ऐसा बन गया, इसका एटीट्यूड ऐसा बन गया, तो जो बात जो स्मृतियां जो बातें ऐसे बार बार रिवाइज की जाती है व्रत के रूप में, ऐसे ऐसे व्रताकार, मान लो कोई संकल्प आपको आ गया, कोई बात पीछे की याद आ गई, और उस बात को याद करते बार बार आप उसको रिवाइज करें, बार बार जैसे अंदर 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 घुमा रहे हैं, तो वो आपकी वृत्ति के अंदर चलेगी, फिर वृत्ति के बाद आ जाएगा इसका संस्कार ही ऐसा बन गया। तो इसलिए स्मृति में तो आई बातें, लेकिन बाबा कहता है जो पास्ट की व्यर्थ की स्मृतियां उनको बिंदी लगा दो, उनको रिवाइज नहीं करो, जो अच्छी अच्छी स्मृतियां उनको रिवाइज करके अपनी वृत्तियां उपराम अनासक्त वैराग्य की ऐसी वृत्तियां बना लो, जो स्मृति में अच्छी बातें उनको रिवाइज करो, उनसे हमारी वृत्तियां बन जाएंगी, और जो व्यर्थ बातें स्मृति में उनको बिंदी लगा दो, उनको भुला दो, तो अच्छी वृत्तियां कायम रहेंगी। चलो ठीक।
तुझसे